नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने पराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राजधानी देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 20 से अधिक विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए पराई सत्र 2025-26 के लिए अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। श्री धामी ने कहा, सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024-25 की तुलना में इस साल गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के बाद तुरंत क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO से जुड़े विभिन्न कार्यों का तेजी से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन, वाहन ट्रांसफर, टैक्स जमा करना और लाइसेंस से संबंधित कई प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन होने वाली है। RTO का कहना है कि कई वाहन स्वामी और लाइसेंस धारकों के मोबाइल नंबर उनके वाहन या लाइसेंस रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए RTO कार्यालय, वाहन शोरूम, प्रदूषण जांच केंद्र और फिटनेस सेंटरों में QR कोड लगाए गए हैं। वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक इन QR कोड को स्कैन करके अपना मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट कर सकते हैं। विकासनगर के ARTO मनीष तिवारी ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट न होने से सिर्फ चालान व अन्य सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं होंगी बल्कि वाहन ट्रांसफर, प्रदूषण जांच और इंश्योरेंस जैसी प्रक्रियाओं में भी सुविधा मिलेगी।
आपकी जो वाहन है या जो आपका DL है उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक, कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने DL बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर कराई है तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया था, फिर हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आया कि कार्यालय में फ्लैक्स और पोस्टर्स और जो हमारे कुछ जो डीलर्स हैं, जो पॉल्यूशन सेंटर्स हैं, यहाँ यहाँ पे हम इसकी सूचना लगाएं। एक उसमें बहुत सिंपल सा है कि आपको एक QR कोड है, उसमें वो आप स्कैन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं।
राजधानी देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 20 से अधिक विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिसमें उत्तराखंड सहित देश विदेश से आए शोधार्थियों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए। ये आयोजन आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिष्ठित पत्रकारों ने प्रतिभाग कर विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेंगे। शीतकालीन सत्र 1 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक चलेगा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एनसीआर और राजस्व पुलिस समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भांग, अफीम, पोस्त और ड्रग्स की अवैध खेती और तस्करी पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज में तेजी से बढ़ रहे नशे के प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
नशे का प्रभाव हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, तो उसके संबंध में सभी को जागरूक करना और किस तरीके से उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है और सब्सटेंस यूज को कम करते हुए उसको खत्म करना है, तो इसके संबंध में विस्तृत जो हमारी रूपरेखा है उसको हम लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है और उस पर फिर हम लोग अमल भी करेंगे और सभी को साथ लेके, क्योंकि समाज के सभी अंग की इसमें मिलकर सहभागिता जरूरी है। कार्रवाई करना आवश्यक है समाज के हर अंग को, तो मिलकर काम करेंगे इसमें और इफेक्टिवली वर्क करने का हम लोगों का प्लानिंग है, तो उस दिशा में जो है कार्रवाई की जाएगी।
बागेश्वर जिले की तहसील गरुड़ में तैनात पटवारी प्रवीण टाकुली को विजिलेंस टीम ने 5,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने ट्रैप कार्रवाई की थी, जिसके दौरान पटवारी को नकदी लेते हुए पकड़ लिया गया। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टिहरी बांध की झील में आयोजित प्रेसिडेंट कप चैंपियनशिप और टिहरी वाटर कप के लगातार खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने अपने देशों के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। अब तक 9 स्वर्ण पदक जीतकर भारत पहले स्थान पर है, जबकि रूस 4 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और कजाकिस्तान 3 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। एशियन कायकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप आगामी ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टिहरी बांध की झील में यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता में भारत सहित 22 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी और भारत सरकार पीटी उषा जी का सपना है कि हम लोग 36 का ओलंपिक ऑर्गेनाइज करें। उस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने के रास्ते में तैयारियां हैं, वो आज से चालू हो जाती है। बहुत बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक, पूरे वर्ल्ड दुनिया के 10,000 खिलाड़ी आते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इंटरनेशनल ज्यादा से ज्यादा इवेंट कराएं ताकि विदेशी आए। उस रास्ते में हमने ये टिहरी कप को इस बार प्रेसिडेंट कप के साथ ज्वाइन किया है। इस इवेंट के थ्रू हमको आने वाले ओलंपिक्स जो होंगे उसको एक ये वेन्यू के रूप में अभी ये कोई डिसाइडेड नहीं है, हम लोग प्रपोज कर सकते।
चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड की बुंगा ग्राम पंचायत में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुद्देश्य शिविर का आयोजन किया है। शिविर में ग्रामीणों ने वन विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, जल निगम, जल संस्थान, संचार, विद्युत, सिंचाई सहित सभी विभागों से संबंधित 55 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से 42 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके में हल्द्वानी के इमाम से 20 घंटे पूछताछ, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने बनभूलपुरा के इमाम से और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। जांच में कोई सुराग न मिलने पर दोनों को देर रात छोड़ा गया। उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, राज्य में गन्ना मूल्य में 30 रूपये का इजाफा, हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक। उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील, जोन 6 में हुआ शामिल, अमर उजाला इस शीर्षक के साथ सब हेडलाइन में लिखता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 जारी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने पराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रूपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राजधानी देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 20 से अधिक विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किया गया और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।